ओपनिंग नरेशन एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ज्ञान गोष्ठी में स्वागत है। आज हम एक ऐसे दार्शनिक के विचारों की गहराई में उतरेंगे जिन्होंने हमारे यथार्थ, हमारी जो रोजमर्रा की वास्तविकता है, उसकी बुनियाद पर ही सवाल उठा दिया। जरा सोचिए, कोई ये कहे कि ये दुनिया, ये पहाड़, नदियाँ, यहाँ तक के मतलब जिस कुर्सी पे हम बैठे हैं वो असल में भौतिक रूप में है ही नहीं।
है ही नहीं, बस एक विचार है।
हाँ, बस एक विचार। सुनने में ही कितना मतलब चौंकाने वाला लगता है ये।
बिल्कुल चौंकाने वाला, और यही क्रांतिकारी विचार दिया था आयरिश दार्शनिक जॉर्ज बर्कले ने। इनका समय था 1685 से 1753 तक, और वो भी एक ऐसे दौर में जब विज्ञान और तर्क का बोलबाला था।
हाँ, न्यूटन का जमाना।
बिल्कुल, न्यूटन के नियम आ चुके थे। तब बर्कले ने एकदम उल्टी बात कही। अभौतिकवाद, इसे प्रत्ययवाद भी कहते हैं। उनका सीधा कहना था, कोई चीज तभी है जब उसे कोई अनुभव कर रहा हो, कोई मन, कोई चेतना उसे जान रही हो।
तो आज की इस ज्ञान गोष्ठी में हम इसी पर बात करेंगे। जॉर्ज बर्कले का जीवन कैसा था, उनका ये हैरतअंगेज दर्शन क्या है, कौन सी किताबें लिखी उन्होंने, और उनके विचारों का असर कितना गहरा रहा।
और ये भी कि आज के समय में, मतलब 250 बाद भी, उनके तर्क क्यों मायने रखते हैं।
हाँ बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर।
देखिए, बर्कले को समझने के लिए ना उस समय का माहौल जानना बहुत जरूरी है। यूरोप में वो ज्ञानोदय यानी एनलाइटनमेंट का दौर था। साइंटिफिक रिवोल्यूशन अपने चरम पर था।
अच्छा,
आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया था, तो ब्रह्मांड की एक बिल्कुल मैकेनिकल, एक यांत्रिक तस्वीर सामने आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि सारी दुनिया बस गणित और फिजिक्स के नियमों से ही चलती है और समझी जा सकती है।
हाँ मतलब एक तरह का भौतिकवाद हावी हो रहा था।
बिल्कुल, भौतिकवाद, मटेरियलिज्म, ये सोच के बस पदार्थ ही असली है, वही सत्य है, ये सोच बुद्धिजीवियों में काफी फैल रही थी।
हाँ, और फिलॉसफी में भी काफी गहमा गहमी थी। ज्ञान आता कहाँ से है, अनुभव से या तर्क से? एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म की बहसें जोरों पर थी।
जी,
जॉन लॉक जैसे जो अनुभववादी थे, वो ज्ञान मीमांसा मतलब एपिस्टेमोलॉजी की नींव रख रहे थे कि हम कैसे जानते हैं जो कुछ भी हम जानते हैं। बर्कले लॉक से बहुत प्रभावित थे, पर वो लॉक और न्यूटन के भौतिकवाद के कुछ नतीजों से, खासकर नास्तिकता की तरफ जो झुकाव बढ़ रहा था, उससे चिंतित थे।
हाँ, वो उसका जवाब देना चाहते थे।
सही, उनके समय के और विचारक देखे तो डेविड ह्यूम थे, वोल्टेयर थे और जोनाथन स्विफ्ट, जो तो उनके दोस्त भी थे।
हाँ, जोनाथन स्विफ्ट। अच्छा, बर्कली के जन्म आयरलैंड में हुआ था, काउंटी किलकेनी में। एक प्रोटेस्टेंट एंग्लो आयरिश परिवार था उनका। उस समय आयरलैंड पर अंग्रेजों का शासन था और वो थे बड़े प्रतिभाशाली, बहुत ही ज्यादा। सिर्फ 15 साल के थे जब डबलिन के मशहूर ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिला ले लिया।
15 साल की उम्र में?
हाँ, और वहां उन्होंने गणित, लॉजिक, भाषाएं, फिलॉसफी सब में कमाल का प्रदर्शन किया।
और वहीं ट्रिनिटी कॉलेज में ही उनका सामना हुआ जॉन लॉक के अनुभववाद से और न्यूटन के दर्शन से।
जी,
इन विचारों ने उन्हें सोचने की नई राह तो दिखाई, पर साथ ही उन्हें चुनौती देने का मन भी बनाया। और ये बात तो वाकई कमाल की है कि उनके जो सबसे क्रांतिकारी विचार थे ना, अभौतिकवाद वाले, वो उन्होंने अपनी जवानी में ही, लगभग 30 साल के होने से पहले ही सोच लिए थे।
ये सचमुच अद्भुत है। तो बर्कले का जो सबसे मुख्य विचार है वो है अभौतिकवाद, इमटीरियलिज्म, या इसे और ठीक से कहें तो आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद, सब्जेक्टिव आइडलिज्म। ये उस जमाने के हिसाब से तो एकदम विस्फोटक विचार था।
हाँ,
उनका मूल तर्क ये था कि जिसे हम भौतिक पदार्थ या मटीरियल सब्सटेंस कहते हैं, मतलब कोई ऐसी चीज जो हमारे मन से आजाद, अपने आप में मौजूद हो, वैसी कोई चीज असल में है ही नहीं।
है ही नहीं।
नहीं, हम दुनिया को सीधे नहीं जानते, हम उसे सिर्फ अपने अनुभवों, अपनी संवेदनाओं, सेंसेशंस, या अपने प्रत्ययों, आइडियाज के जरिए जानते हैं। जैसे किसी चीज का रंग, उसकी बनावट, गंध, आवाज, ये सब। और ये सारी संवेदनाएं या प्रत्यय, बर्कले ने कहा, ये सिर्फ किसी ना किसी मन, माइंड के अंदर ही हो सकते हैं, उससे बाहर नहीं।
अच्छा, और इसी विचार को उन्होंने अपने उस मशहूर लैटिन सूत्र में कहा, एस्से एस्त परसीपी।
हाँ, एस्से एस्त परसीपी,
मतलब होना अनुभव किया जाना है, टू बी इज टू बी परसीव्ड। लेकिन अगर इसको सोचें तो ये बड़ा अजीब लगता है। मतलब अगर जंगल में पेड़ गिरे और कोई सुनने वाला ना हो तो आवाज ही नहीं हुई, या जब हम कमरे से बाहर चले जाएं तो वो कमरा और सामान सब गायब क्योंकि कोई देख नहीं रहा।
ये सवाल बिल्कुल सही है और उठता ही है। बर्कले ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा, नहीं, चीजें गायब नहीं होती।
अच्छा, क्यों?
क्योंकि एक ऐसा मन है जो हर चीज को हर समय अनुभव कर रहा है।
अच्छा।
और वो मन है ईश्वर का। बर्कले के लिए ईश्वर एक सर्वव्यापी, सब कुछ जानने वाला शाश्वत मन है। उसकी चेतना में पूरी दुनिया लगातार बनी रहती है।
ओके।
हमारी चेतना तो आती जाती है, हम सो जाते हैं, कभी बेहोश हो जाते हैं, पर ईश्वर का अनुभव तो हमेशा है, लगातार है। यही ईश्वरीय चेतना दुनिया को एक स्थिरता देती है, एक निरंतरता, एक ऑब्जेक्टिविटी। बर्कले का मानना था कि ये जो भौतिक पदार्थ का आइडिया है ना, ये फालतू है, और इसी से नास्तिकता और स्केप्टिसिज्म यानी संदेहवाद पनपता है।
अच्छा, मतलब संदेहवाद कि पक्का ज्ञान हो ही नहीं सकता।
हाँ, तो ईश्वर को केंद्र में लाकर वो इन समस्याओं का हल निकाल रहे थे। उनका एक और तर्क था। सोचिए, क्या आप ऐसी गर्मी की कल्पना कर सकते हैं जिसे कोई महसूस ना कर रहा हो?
नहीं, गर्मी तो महसूस करने की ही चीज है।
बिल्कुल। या ऐसा स्वाद जिसे कोई चख ना रहा हो? तो उन्होंने कहा कि रंग, आकार, कठोरता, ये सब भी इसी तरह के अनुभव हैं। ये बिना अनुभव करने वाले मन के कैसे हो सकते हैं?
यानी ईश्वर सिर्फ बनाने वाला नहीं, बल्कि वो धारक भी है जिसके अनुभव में दुनिया टिकी है। ये तो वाकई बहुत अलग नजरिया है। अच्छा, बर्कले ने अपने इन विचारों को समझाने के लिए कई किताबें लिखीं।
हाँ।
एक आई थी 1709 में, एन एसे टुवर्ड्स अ न्यू थ्योरी ऑफ विजन।
हाँ, दृष्टि का नया सिद्धांत।
इसमें उन्होंने कहा कि हम दूरी या गहराई या चीजों का आकार सीधे आंखों से नहीं देखते, बल्कि ये हमारी नजर और छूने जैसी दूसरी इंद्रियों के अनुभवों का एक सीखा हुआ तालमेल है।
ये तो साइकोलॉजी के लिए भी बड़ा काम था। बेकर विजन थ्योरी में ये बहुत महत्वपूर्ण काम था। और फिर इसके फौरन बाद 1710 में आई उनकी सबसे मशहूर किताब, फिलॉसफी के लिहाज से सबसे असरदार, अ ट्रीटीज कंसर्निंग द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज, जिसे छोटा करके प्रिंसिपल्स कहते हैं।
प्रिंसिपल्स।
हाँ, इसी किताब में उन्होंने अपना अभौतिकवाद या प्रत्यवाद का सिद्धांत पूरी दार्शनिक गहराई और तर्कों के साथ समझाया। इसमें उन्होंने विस्तार से बताया कि ये जो भौतिक पदार्थ की धारणा है, ये क्यों लॉजिकली बेकार है और इसकी जरूरत ही नहीं है।
प्रिंसिपल्स थोड़ी मुश्किल थी, शायद अकेडमिक थी, इसीलिए बर्कले ने अपने विचारों को आम लोगों तक पहुंचाने का एक और तरीका निकाला। 1713 में उन्होंने लिखी थ्री डायलॉग्स बिटवीन हाइलास एंड फिलोनस।
हाँ, संवाद शैली में।
हाँ, डायलॉग फॉर्म में। ये पढ़ने में आसान है, दिलचस्प भी। इसमें दो कैरेक्टर हैं, हाइलास जो आम भौतिकवादी सोच वाला है।
हाइलेस ग्रीक शब्द हाइले यानी पदार्थ से।
जवाब देते हैं,
जब हम बर्कले की तुलना उस दौर के दूसरे विचारकों से करते हैं तो उनकी जगह और साफ हो जाती है। जैसे हमने कहा, वो जॉन लॉक और डेविड ह्यूम के साथ तीन महान ब्रिटिश अनुभववादियों में गिने जाते हैं।
जी,
उन्होंने लॉक का अनुभववाद लिया पर उसे उसकी लॉजिकल हद तक खींच दिया। लॉक मानते थे कि हमारे जो विचार या आइडियाज हैं, उनका कारण कोई बाहर की अनजान भौतिक चीज है, जिसे उन्होंने सबस्ट्रेटम कहा,
आधार द्रव्य।
हाँ। बर्कले ने कहा, ये अनजान पदार्थ की बात ही बकवास है। अगर वो अनजान है तो हम उसके बारे में कुछ जान ही नहीं सकते, तो फिर उसे मानने का मतलब क्या? बर्कले का तर्क था कि हम तो सिर्फ अपने विचारों या संवेदनाओं को ही सीधे जानते हैं, और एक विचार सिर्फ दूसरे विचार जैसा हो सकता है, किसी ऐसी चीज जैसा नहीं जो विचार है ही नहीं, जैसे कि भौतिक पदार्थ।
तो बर्कले ने लॉक के रास्ते पर चलकर भौतिक पदार्थ को ही हटा दिया। लेकिन फिर आए डेविड ह्यूम, उन्होंने बर्कले की ही तर्क वाली विधि को और आगे बढ़ाया।
हाँ, और भी आगे।
ह्यूम ने कहा, अच्छा, अगर हम सिर्फ अपनी संवेदनाओं और विचारों को जानते हैं और इस बेसिस पर भौतिक पदार्थ को नकार सकते हैं, तो यही लॉजिक हमारे अपने मन या आत्मा के परमानेंट अस्तित्व पर क्यों नहीं लागू होता?
सही सवाल।
क्या हमें अपने सेल्फ का कोई सीधा लगातार अनुभव होता है या ईश्वर का? ह्यूम ने इसी आधार पर मन और ईश्वर के पक्के ज्ञान पर भी शक जाहिर किया। इसी को गहन संदेहवाद कहते हैं।
हाँ, कि किसी भी चीज का निश्चित ज्ञान शायद मुमकिन ही नहीं है।
ये डेकार्त के ड्यूअलिज्म से भी अलग है। डेकार्त तो मन और पदार्थ दोनों को मानते थे, दो अलग चीजें। बर्कले ने पदार्थ को ही उड़ा दिया। उनके लिए सिर्फ मन था, ईश्वर का और हमारा और विचार, बस यही असली थे।
जाहिर है, बर्कले के इतने मतलब अजीब लगने वाले विचारों का फौरन स्वागत तो नहीं हुआ। शुरू में तो बहुत मजाक उड़ा उनका, उन्हें अव्यवहारिक, हास्यास्पद समझा गया। वो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन वाला किस्सा तो बहुत मशहूर है।
हाँ, पत्थर को लात मारने वाला।
हाँ, 18वीं सदी के बड़े लेखक थे वो। कहते हैं बर्कले के अभौतिकवाद को खारिज करने के लिए उन्होंने एक बड़े पत्थर को जोर से लात मारी और बोले, मैं इसे ऐसे खारिज करता हूँ। हाँ, पर ये तो बर्कले के तर्क को बिल्कुल ही गलत समझना था। बर्कले पत्थर के अनुभव को कहाँ नकार रहे थे, उसकी कठोरता, लात मारने पर जो दर्द हुआ, उस संवेदना को। वो तो कह ही रहे थे कि ये सब संवेदनाएं या विचार हैं।
हाँ, वो तो यही कह रहे थे।
वो तो सिर्फ ये नकार रहे थे कि इन संवेदनाओं का कारण हमारे मन से आजाद कोई भौतिक पत्थर है। जॉनसन का लात मारना तो असल में बर्कली की थ्योरी को कन्फर्म कर रहा था कि पत्थर का अनुभव होता है।
हाँ, ये समझना जरूरी है कि बर्कले यथार्थ को नकार नहीं रहे थे, बल्कि उसकी प्रकृति को फिर से परिभाषित कर रहे थे। खैर, धीरे धीरे फिलोसोफर्स ने उनके तर्कों की बारीकी और लॉजिकल मजबूती को पहचाना, उन्हें मॉडर्न प्रत्ययवाद आइडियलिज्म का एक बड़ा फाउंडर माना जाने लगा,
जी,
और उनका असर बहुत गहरा पड़ा, खासकर जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट पर। कांट ने तो माना कि बर्कले के विचारों ने उन्हें वैचारिक जड़ता या हठधर्मिता की नींद से जगाया।
डॉगमैटिक्स लंबा से।
हाँ,
हाँ,
और कांट के अपने कॉम्प्लेक्स दर्शन को बनाने में बर्कले का बड़ा हाथ था। हालांकि कांट बर्कले के सब्जेक्टिव आइडियलिज्म से पूरी तरह सहमत नहीं थे, पर बर्कले ने जो सवाल उठाए, उन्होंने कांट को अनुभव और वास्तविकता के रिश्ते पर नए सिरे से सोचने को मजबूर किया।
और ये प्रासंगिकता आज भी है। बर्कले के तर्क आज भी फिलॉसफी के कई एरियाज में, जैसे तत्वमीमांसा, मतलब वास्तविकता की प्रकृति क्या है, या ज्ञान मीमांसा, या अनुभव का दर्शन, इनमें बहस का सेंट्रल टॉपिक है। चेतना क्या है, रियलिटी और हमारे अनुभव का रिश्ता क्या है। जब भी हम इन सवालों से जूझते हैं, बर्कले के विचार कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। यहां तक कि आज की जो एकदम नई बहसें हैं ना,
जैसे
जैसे वर्चुअल रियलिटी, उसकी प्रकृति क्या है, या क्वांटम फिजिक्स में जो ऑब्जर्वर इफेक्ट है।
हाँ, कि देखने वाला खुद नतीजे को बदल देता है।
बिल्कुल, ये सब कहीं ना कहीं मन और वास्तविकता के रिश्ते पर ही तो सवाल उठाते हैं। बर्कले की गूंज है इनमें।
चलिए अब उनके कुछ मशहूर कोट्स देखते हैं जो उनके दर्शन की चाबी जैसे हैं। सबसे फेमस तो वही है जो उनके पूरे दर्शन का निचोड़ है, एसे एस्ट परचीपी।
हाँ, होना अनुभव किया जाना है, अस्तित्व अनुभव पर निर्भर है। एक और बहुत दमदार कथन उनकी किताब प्रिंसिपल से है। बड़े नाटकीय ढंग से वो अपना अभौतिकवाद रखते हैं। स्वर्ग के सभी गायक मंडल और पृथ्वी के सारे साजो सामान, संक्षेप में वे सभी पिंड जो दुनिया के ढांचे का निर्माण करते हैं, उनका मन के बिना कोई अस्तित्व नहीं है।
क्या बात है।
ये साफ करता है कि उनके लिए मन या चेतना ही असली प्राइमरी रियलिटी है।
और वो अक्सर दार्शनिकों की बनाई जो अमूर्त धारणाएं होती थी ना, उनकी आलोचना करते थे कि इनसे सिर्फ कन्फ्यूजन होता है। इसी बारे में उनका ये कहना बड़ा सटीक है, हमने पहले धूल उड़ाई है और फिर शिकायत करते हैं कि हम देख नहीं सकते हैं। उनका मानना था कि भौतिक पदार्थ जैसी कई फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम असल में हमारी अपनी ही बनाई हुई वैचारिक उलझने हैं, जिन्हें हम खुद ही सुलझा नहीं पा रहे हैं।
बर्कली सिर्फ किताबी दार्शनिक नहीं थे, उनके जीवन में कुछ बड़े दिलचस्प प्रैक्टिकल पहलू भी थे। एक तो उनकी बहुत बड़ी योजना थी बरमूडा प्रोजेक्ट।
बरमूडा प्रोजेक्ट,
हाँ, वो अटलांटिक महासागर में जो बरमूडा द्वीप है, वहाँ एक कॉलेज खोलना चाहते थे। उनका मकसद था कि वहाँ अमेरिका के जो मूल निवासी हैं और जो अंग्रेज उपनिवेशी हैं, उनके बेटों को आर्ट्स, साइंस और ईसाई धर्म पढ़ाया जाए।
अच्छा, और इसके लिए उन्हें ब्रिटिश सरकार से पैसे मिलने का वादा भी हुआ था। इसी वादे के भरोसे वो 1728 में अमेरिका चले गए और करीब 3 साल न्यूपोर्ट, रोड आइलैंड में रहे।
हाँ, वहाँ उन्होंने घर बनवाया, खेती की जमीन ली, लोकल बुद्धिजीवियों से मिले।
लेकिन अफसोस, सरकार ने वो वादा कभी पूरा नहीं किया, पैसा आया ही नहीं। आखिरकार निराश होकर बर्कले 1731 में आयरलैंड लौट गए। पर हाँ, ये जानना मजेदार है कि अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर जो मशहूर शहर है बर्कले,
और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले। हाँ,
उनका नाम जॉर्ज बर्कले के सम्मान में ही रखा गया है। पर मजे की बात ये है कि नाम उनके दर्शन के लिए नहीं, बल्कि उनके कविता की लाइन के लिए रखा गया था, साम्राज्य का मार्ग पश्चिम की ओर जाता है।
हाँ, ये विडंबना ही है। अच्छा, उनके जीवन के आखिरी सालों से जुड़ी एक और अनोखी बात है। बर्कले टार मोटर के बहुत बड़े समर्थक बन गए थे।
टार वाटर,
हाँ,
ये क्या चीज है?
ये चीड़ के पेड़ की राल या तारकोल होता है ना, पाइन टार, उसे पानी में मिलाकर बनाते थे। और उनको पक्का यकीन हो गया था कि ये लगभग हर बीमारी का इलाज है, रामबाण।
हर बीमारी का।
हाँ, वो इसे लेकर इतने जुनूनी थे कि 1744 में इस पर पूरी किताब लिख डाली, साइरिस: अ चेन ऑफ फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शंस एंड इंक्वायरीज कंसर्निंग द वर्च्यूज ऑफ टार वाटर। और ये किताब शुरू होती है टार वाटर के कथित फायदों से और धीरे धीरे पाठक को फिलॉसफी, नेचर, मन, ईश्वर इन सब गहराइयों तक ले जाती है। उनके आखिरी दौर के विचारों का एक बड़ा अजीब सा दस्तावेज है ये।
जॉर्ज बर्कले वाकई मतलब दर्शन के इतिहास के सबसे मौलिक, सबसे साहसी और शायद सबसे ज्यादा गलत समझे गए विचारकों में से एक थे। एक ऐसे युग में जब साइंस भौतिक दुनिया की कामयाब व्याख्या कर रहा था, उन्होंने पूरी भौतिक दुनिया के स्वतंत्र अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ा बौद्धिक साहस था।
बिल्कुल, उनका दर्शन हमें लगातार सोचने को मजबूर करता है कि जिसे हम रियलिटी कहते हैं उसका असली नेचर क्या है। क्या वो हमारे मन, हमारी चेतना से एकदम आज़ाद है, या फिर हमारी चेतना और हमारे अनुभव ही रियलिटी को बनाते हैं।
हो सकता है हम उनके अंतिम नतीजे को ना माने कि सिर्फ मन और विचार ही सच है।
हाँ, शायद ये मानना मुश्किल हो।
मुश्किल हो,
पर जो तर्क उन्होंने दिए वो हमें अनुभव, ज्ञान और दुनिया के साथ हमारे रिश्ते की जो उलझने हैं उन पर गहराई से सोचने के लिए हमेशा उकसाते रहेंगे। वो हमें अपनी बनी बनाई मान्यताओं पर सवाल उठाना सिखाते हैं।
तो आज की ज्ञान गोष्ठी सुनने वालों के लिए एक विचार हम यहीं छोड़ जाते हैं। अगर जैसा बर्कले ने कहा, हमारे अनुभव ही वास्तविकता बनाते हैं, तो फिर एक पूरी तरह से इमर्सिव मतलब एकदम डुबो देने वाला वर्चुअल रियलिटी का अनुभव या एक बहुत ही जीवंत सपना हमारी जागती हुई हालत की असली दुनिया के अनुभव से फंडामेंटली कितना अलग है? चेतना के लेवल पर क्या एक अनुभव दूसरे से कम असली कहा जा सकता है? सोचिएगा इस पर।
15:18:30 क्लोजिंग नरेशन। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।